अहन ने विजय, दामिनी और अक्षरा को अपने घर पर होस्टेस बना लिया था। विजय ने सबके सामने निशा को जान से मारने का सच कबूल किया था और साथ ही ये भी कि उसने ही अहन का एक्सीडेंट करवाया था। अहन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था, उन सबको यही लगा कि अहन की याददाश्त वापस आ गई है। अक्षरा, दामिनी और विजय को अपने घर के बेसमेंट में अपने आदमियों से कैद करवाने के बाद अहन कमरे में आ गया। चाहत भी उसके पीछे पीछे रूम में आई। चाहत के आते ही अहन ने उसकी तरफ देखा। चाहत के चेहरे पर मायूसी थी। वो अहन के सामने रो नहीं रही थी, फिर भी उसकी तेज सांसें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। अहन उठकर चाहत के पास गया और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर मैं विजय ओबेरॉय का कुछ नहीं कर सकता। वो इंसान ऐसा ही है। शायद अब तुम्हारी शिकायत दूर हो गई होगी कि मैंने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया या अक्षरा को किडनैप करके क्यों रखा होगा। चाहत ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। तब अहन ने उसका हाथ पकड़कर सहलाकर कहा, तुम रो सकती हो, इस तरह खुद को तकलीफ देकर कोई फायदा नहीं है। अहन की बात सुनते ही चाहत की आंखों में कैद आंसू बाहर निकल आए थे। वो जोर जोर से रोने लग गई थी। उसने रोते हुए कहा, मेरी मम्मा की क्या गलती थी अहन, जो उन्होंने उनकी जान ली। वो तो पहले से ही इतनी बीमार थी, मैंने उनको ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको तो याद होगा ना अहन। रोते हुए चाहत ने अहन की तरफ देखा। उसकी सांस फूलने लगी थी। चाहत की इस हालत में तबीयत बिगड़ना उसके लिए ठीक नहीं था। अहन जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आया और उसे शांत करते हुए बोला, वो तुमसे कब का दूर जा चुकी है, अब उन्हें याद करके खुद की तबीयत खराब करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इस तरह रोने और स्ट्रेस लेने से हमारे बच्चे पर गलत असर होगा। वो मुझसे दूर नहीं गई थी अहन, उन्हें मुझसे छीना गया था, चाहत ने सुबकते हुए कहा। उसने पानी पीकर खुद को नॉर्मल किया और फिर अहन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने विजय ओबेरॉय का चेहरा आ गया। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि अहन और विजय एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते थे। कोई भी शख्स कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों से प्यार ही करता था, फिर विजय ओबेरॉय के दिल में अहन और आयुष के लिए इतनी नफरत क्यों थी। चाहत ने गहरी सांस ली और अहन से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है अहन। अहन कुछ पल रुका और फिर जवाब में कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, जब याद आ जाएगा तो बता दूंगा। अहन की बात सुनकर चाहत को हैरानी हुई। बाहर जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा था, उसे यही लगा कि अहन को सब कुछ याद आ गया है। चाहत सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, तभी अहन ने उसके बिना पूछे ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तनु ने थोड़ा बहुत बताया था, कुछ डिसीजन मेरे थे। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे लगा अहन की याददाश्त वापस आ गई है, तो एक पल के लिए चाहत के दिल में सुकून था कि अब अहन उससे प्यार से पेश आएगा। चाहत कुछ कहती उससे पहले अहन बोल पड़ा, रात काफी हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। इतना कहकर वो चाहत के पास से उठकर जाने को हुआ। तभी चाहत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आप अब उनके साथ क्या करने वाले हैं। पहले अपना सब कुछ उनसे वापस लूंगा, जो उन्होंने धोखे से मुझे लिया है, अहन ने बिना किसी भाव के कहा। चाहत ने उसके बात पर हामी भरी और अहन का हाथ छोड़ दिया था। अहन के साथ रहते हुए उसे अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। वो उसे काफी रूडली बात करता था या फिर ऐसे बात करता था जैसे वो उसकी कुछ न लगती हो। अहन चाहत के लिए बिस्तर सेट कर रहा था। उसे बेड पर ठीक से लेटाने के बाद अहन दूसरी तरफ जाने को हुआ। तभी चाहत ने उसके पीछे से तेज आवाज में कहा, आई एम सॉरी अहन, मुझे लगा मेरी मम्मा को आपने मारा है, बस इसी वजह से आपको छोड़कर चली गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, पहले आपसे बात करनी चाहिए थी। अहन उसकी तरफ पलटा और जवाब में कहा, अब अचानक इस तरह गलती का एहसास करने का कोई फायदा नहीं है चाहत, तुम्हारी बस एक बेवकूफ़ी ने मेरा मुझे सब कुछ छीन लिया है, मेरी मॉम की प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई, एक चीटर लड़की मेरी लाइफ में आ गई, तुम मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे पता तक नहीं, और सबसे बड़ी बात मुझे कुछ याद नहीं है, तुम्हारा एक छोटा सा सॉरी इन सब की भरपाई नहीं कर सकता जो मैंने पिछले 8 महीनों में झेला है। अहन का कहना भी सही था, उसने काफ़ी कुछ सहन किया था, ऐसे में चाहत का सॉरी किसी काम का नहीं था। चाहत को वहीं पर छोड़कर अहन दूसरे कमरे में चला गया था। उसके जाने के बाद चाहत की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। अचानक ही उसके दिमाग में पिछले उन दिनों की यादें ताज़ा हो गई जब वो अहन से अलग हुई थी। उसने अकेले अपने बच्चों को संभाला, एक अनजान देश में सर्वाइव किया, ऊपर से अहन की याद आने पर खुद को कंट्रोल में रखा, उसके लिए भी सब बहुत मुश्किल था, बस फ़र्क ये था कि उसे समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। अपनी मम्मा को याद करते हुए चाहत कुछ ही देर में नींद के आगोश में थी, तो वहीं अहन अपने कमरे की बालकनी के पास खड़ा आसमान के तारों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अहन आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, यादें धुंधली हो गई हैं और तस्वीर मिटने लगी है तुम्हारी दिल से, पर ये दिल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमसे दूर नहीं जाना चाहता डॉल। अजीब इत्तेफाक है ना, कुछ याद नहीं है फिर भी करीबी सुकून दे रही है। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे दर्द हो रहा है, वरना उन्हें इस तरह किडनैप करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पता नहीं मुझे सब कुछ कब तक याद आएगा, पर उससे पहले मैं सब ठीक करके रहूंगा, अपनी लाइफ में, मेरे अपनों की लाइफ में। आहन को कुछ भी याद नहीं आया था, वो चाहत से गुस्सा भी था, लेकिन प्यार उस गुस्से पर हावी हो रहा था। जैसे ही विजय ओबेरॉय ने निशा को मारने की बात कही, तभी चाहत की जो हालत थी उसे देखने के बाद ही उसने उन तीनों को बंदी बनाया था। कुछ देर वैसे ही आसमान को देखने के बाद आहन सोने के लिए चला गया था। अगली सुबह आहन ने उठकर अपना रूटीन फॉलो किया। वो तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा, जहां शिवानी और आयुष तो थे लेकिन चाहत नहीं थी। उन्हें देखते ही आहन ने पूछा, चाहत कहाँ है? अब तक उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए। रात को परेशान होने की वजह से देर से सोई होगी, मैं गई थी उसके रूम में, वो अब तक सो रही है, शिवानी ने जवाब दिया। फिर उसने कुछ पल रुककर आहन से पूछा, तुम दोनों अलग रूम में क्यों सो रहे हो? तुम्हें चाहत का इस हालत में खास ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगा तुम चाहत के साथ ही सोए होंगे। तुम दोनों के अलग रूम में सोने की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है, आहन ने बेपरवाही से कहा और फिर चेयर पर बैठकर अपनी टेबल में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। आहन ने जो जवाब दिया था उसे सुनकर शिवानी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, तो वहीं आयुष की हंसी छूट गई। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, अजीब बात है, भाभी प्रेग्नेंट तक हो गई और अभी भी इन्हें ये बहाना देना है कि हमारी शादी नहीं हुई है। आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट आहन ने नोटिस कर ली थी। उसने आयुष की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, यहाँ बैठकर दांत दिखाने से बेहतर होगा कि ओबेरॉय इंडस्ट्रीज जाओ और वहाँ सब कुछ संभालो। लेकिन भाई, मैं वहाँ का लीगल ओनर नहीं हूँ, आपको नहीं पता, पर उस विजय ओबेरॉय ने हम दोनों के खिलाफ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर ले रखे हैं, हम ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में नहीं जा सकते हैं, आयुष ने बताया। आहन ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, ठीक है फिर मुझे 2 दिन का टाइम दो।
तुम्हें लगता है वो शख्स पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारा नाम कर देगा? शिवानी ने सिर हिलाकर कहा। वो विजय को अच्छे से जानती थी, पावर ऑफ अटॉर्नी ही उसका एकमात्र सहारा था जो उसे और उसकी फैमिली को आहन से बचा सकता था। जब पूरी पावर ही मेरे हाथ में आने वाली है तो फिर किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉम। रही बात विजय ओबेरॉय की, तो वो साइन भी करेगा और मेरी हर बात भी मानेगा, जस्ट वेट एंड सी, आहन ने जवाब दिया। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद शिवानी और आयुष को लगा कि हमेशा की तरह आहन सीधा ऑफिस जाएगा, लेकिन वो प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। आहन उस खाने की प्लेट के साथ सीधा चाहत के कमरे की तरफ जाने लगा। उसे चाहत की परवाह करते देखा शिवानी और आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आयुष ने आहन के जाते ही कहा, सब कुछ कितना अच्छा है ना मॉम, जो भाई को सब याद आ गया है, देखा उन्होंने एक दिन में ही सब कुछ हैंडल कर लिया। हाँ, और मुझे इसी दिन का इंतज़ार था, बस एक बार चाहत और आहन शादी कर ले, चाहे वो रजिस्टर्ड मैरिज या भले ही शादी मंदिर में ही क्यों ना हो, आहन उससे शादी करने वाला था ये बात सबको पता है, ऐसे में चाहत की प्रेग्नेंसी बाहर आई तो बखेड़ा खड़ा हो सकता है, शिवानी ने परेशान स्वर में कहा। उसका कहना भी सही था। आयुष ने शिवानी का हाथ सहलाकर कहा, आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भाई ठीक हो गए हैं तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, वो भाभी के पास है, मैं तब तक ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे भी अब क्या टेंशन है, वो चुड़ैल तो नीचे कैद है। शिवानी ने उसकी बात पर हामी भरी। वहीं दूसरी तरफ आहन चाहत के कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचा। वो जानता था कि रात को उसकी मॉम की मौत की सच्चाई बाहर आने के बाद वो ठीक से सोई तक नहीं होगी। आहन का शक सही निकला, चाहत को रात को बिल्कुल भी ठीक से नींद नहीं आई थी, वो सोने की कोशिश भी करती तो कुछ देर सोने के बाद उसकी नींद टूट जाती थी। आहन के कमरे में आते ही चाहत ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे ये लगे कि चाहत सो रही है और वो वहां से चला जाए। आहन चाहत के पास आया और उसे कुछ पल देखने के बाद वो तेज आवाज में बोला, काफी अच्छा दिखावा कर लेती हो तुम, चलो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है हमें। मुझे नींद आ रही है और ना ही मेरा कहीं जाने का मन है, आप ऑफिस चले जाइए, मैं शिवानी आंटी के साथ डॉक्टर के पास हो आऊंगी, चाहत ने एक तकिया को अपने मुंह पर रखते हुए कहा। आहन ने प्लेट साइड में रखी और उसने चाहत के पास आकर वो तकिया हटाया। आहन ने जबरदस्ती चाहत का हाथ पकड़कर उसे उठा दिया था। उसने देखा रोने की वजह से चाहत की आंखें सूजी हुई और लाल थी। चाहत आहन की तरफ देखने की वजह इधर उधर देख रही थी। आहन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है फिर मैं श्रद्धा को बोल देता हूँ कि वो आज शाम को हमारे घर डिनर के लिए ना आए। श्रद्धा का नाम लेते ही चाहत ने जल्दी से आहन की तरफ देखा। वो उसकी इकलौती फ्रेंड थी जिसे वो कई टाइम से मिल नहीं पा रही थी। चाहत ने तुरंत नामे सिर हिलाया और आहन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अब सोच क्या रहे हैं, जल्दी से मुझे उठाइए, मैं अपने आप बेड से खड़ी नहीं हो सकती। दैट्स लाइक गुड गर्ल, आहन धीरे से बोला और फिर चाहत को उठने में मदद करने लगा। चाहत बाथरूम में चली गई थी तो वहीं आहन इस वक्त नीचे बेसमेंट में जा रहा था। उसने अपने गार्ड्स की निगरानी में दामिनी, अक्षरा और विजय को पिछले 7 घंटे से कैद कर रखा था। आहन के हाथ में कुछ पेपर थे और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द थे। अहान ने नीचे जाने से पहले किसी को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में? बस सिर्फ 5 मिनट। सामने से एक लड़की की आवाज आई, उसके बाद अहान ने कॉल कट कर दिया। बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हुए अहान ने खुद से कहा, कमजोरी हर शख्स की होती है विजय ओबेरॉय, पर शायद तुम ये भूल गए हो। अब तुम्हें ये याद दिलाने का वक्त आ गया है कि अहान ओबेरॉय कौन है। देखते हैं उसे अपने सामने देखकर तुम इन पेपर्स पर साइन कैसे नहीं करते हो।